किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। मेरा पॉडकास्ट किस्सा कहानी बाय निधि बासु फॉलो करें और फॉलो के बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिल जाए। रवींद्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला के सबसे अच्छे लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर माने जाते हैं प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। तो आज सुनाऊंगी मैं आपको इनकी लिखी एक कहानी जो है सिर्फ 100 साल पुरानी। जी हाँ, जब टेलीफोन सिर्फ बड़े बड़े ऑफिस में होता था, मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया, स्टेटस अपडेट वगैरह वगैरह बिल्कुल नहीं होते थे, जब गाड़ी का मतलब घोड़ा गाड़ी होता था। लाइफ वॉज सिंपल एंड येट फुल ऑफ इमोशंस एंड ह्यूमर। तो आज सुनिए प्रभात कुमार मुखोपाध्याय द्वारा लिखी बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद जमाई। वाचन है मेरा यानी निधि बासु का। नलिनी बाबू अलीपुर के पोस्ट मास्टर हैं। समय लगभग समाप्त होने को था। ऑफिस में नलिनी बाबू छटपटा रहे थे। आश्विन का महीना था, पूजा निकट थी। नलिनी बाबू ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी थी, लेकिन हेड ऑफिस से अभी मंजूरी नहीं आई थी। यदि आज 5 बजे तक भी मंजूरी आ जाए तो वो आज की ही मेल से इलाहाबाद रवाना हो जाएं। इलाहाबाद में उनकी ससुराल है। नलिनी बाबू का यही पहली बार ससुराल जाना हो रहा है। सामान खरीद कर बक्से में सजा कर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक छुट्टी की मंजूरी नहीं आई। 4 बज गए तो अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। बड़ी आशा लेकर नलिनी बाबू ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। हेलो, लेकिन खेद है कि छुट्टी की मंजूरी नहीं आई। किसी के मनी ऑर्डर को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई थी, उसी की इंक्वायरी थी। नलिनी बाबू निराश होकर फिर कुर्सी पर आ बैठे। कुछ देर तक काम करने के बाद जेब से पत्र निकालकर पढ़ने लगे। ऊपर एक पक्षी का चित्र बना था, उसके नीचे सुनहरे अक्षरों में छपा था, पक्षी आ उड़ चले वहां जहां बसे हैं प्राणाधार। उनकी पत्नी का लिखा पत्र था। इसे वो पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ने लगे। प्रियतम, तुम्हारा प्रेम भरा पत्र पाकर मेरे मन प्राण शीतल हो गए। इतने दिनों के बाद क्या सच मेरे लंबे विरह काल की समाप्ति होगी? तुम्हें देखने के लिए मेरा चित्त चकोर बड़ा ही व्याकुल है। विवाह हुए आज 2 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक एक दिन भी मैं आपकी सेवा ना कर सकी। छुट्टी होते ही तुरंत चले आओ। आशा भरी नजरों से मैं आपकी राह देख रही हूँ। दीनाजपुर से मंजली दीदी भी आज आ गई हैं। किस दिन छुट्टी होगी? पंचमी के दिन रवाना हो सकोगे क्या? तो बस आज इतना ही याद रखना, भूलना नहीं। तुम्हारी ही सरोजनी। नलिनी बाबू ने पत्र को उलट पलट कर पढ़ा और फिर जेब में रख लिया। 5 बजने में अधिक देर नहीं थी। आज भी छुट्टी की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। नलिनी बाबू एक हल्की सी गहरी सांस छोड़कर फिर काम में मन लगाने की चेष्टा करने लगे। जो हो, आज चतुर्थी ही है। अगर कल भी छुट्टी की खबर आ जाए तो भी वो पंचमी के दिन रवाना हो सकेंगे। 5 बजने में जब 2-1 मिनट रह गए तो फिर टेलीफोन की घंटी झनझना उठी। उन्होंने फिर से रिसीवर उठाया। यस, तो छुट्टी मिल गई नलिनी बाबू को 2 सप्ताह के लिए। डिप्टी पोस्टमास्टर को चार्ज देकर आज रात ही वो रवाना हो सकेंगे। सरोजनी के पत्र से मालूम हुआ था कि दीनाजपुर की मंजली दीदी आ गई हैं। इनके आने की बात नलिनी बाबू को पहले से ही मालूम थी, और इसीलिए खासकर वो इस बार इलाहाबाद जाने के लिए अधिक व्यग्र थे। दीनाजपुर की मंजली दीदी की ओर उनका एक विचित्र तरह का झुकाव है, इसलिए वो उनसे एक बार मिलने के लिए बड़े ही उतावले थे। लेकिन ये माजरा क्या था ये समझने के लिए मंजली दीदी का थोड़ा परिचय देना और नलिनी के विवाह के समय का कुछ इतिहास बताना यहाँ आवश्यक है। मंजली दीदी के पति बड़े साहबी ठाट के आदमी हैं। वे दीनाजपुर के डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं। मंजली दीदी का नाम बता देने से ही सब उन्हें अनायास पहचान जाते हैं। श्रीमती कुंजबाला देवी रचित ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं आज के मासिक पत्रों में किसने नहीं पढ़ी होंगी। ये तो सौभाग्य ही कहिए कि फुलर साहब बांग्ला नहीं जानते। अगर जानते होते ना तो अब तक कुंजबाला के पति की नौकरी पर संकट आ चुका होता। कुंजबाला विदुषी तो हैं ही, पर उनकी जबान भी उस्तरे की तरह तेज है। उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई है, इस कारण उनका आइडियल सभी विषयों में बंगाल की साधारण नारियों से भिन्न है। उदाहरणार्थ, एक बार उनके एक देवर ने एक शीशी इत्र खरीदा। कुंजबाला ने देखा तो पूछा, ये किसके लिए लाए हो? इस्तेमाल करूंगा। धत, ऐसी चीजें तो सिर्फ औरतें और बाबू लोग लगाते हैं, मर्द भी कहीं इत्र लगाते हैं? बेचारा देवर था बालक, उसने भाभी के छिपे मजाक को न समझकर बेवकूफ की तरह कहा, क्यों बाबू लोग क्या मर्द नहीं होते? नलिनी बाबू की जब शादी हुई थी तब उनका चेहरा गोल मटोल बिल्कुल नंदलाल जैसा था। नरम नरम दोनों गाल, मक्खन के लोंदे जैसे दोनों हाथ, कलाई की कोमल हड्डियां, उससे भी कोमल मांस से बिल्कुल मढ़ी हुई। सभ्यता की दृष्टि से उचित न होने पर भी विवाह के समय मजाक का तेज तीर चलाने का लोभ वो नहीं छोड़ सकी। रवींद्रनाथ की कविता में कुछ हेर फेर करके वो बोली, नलिनी सम हुलिया है उसकी, नलिनी जिसका नाम, कोमल 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 अति ही कोमल जैसा नाम, जैसा कोमल वैसा बेकल वैसा आलस धाम, नलिनी समहुलिया है उसकी, नलिनी जिसका नाम। व्यंग की एक ही बात से मनुष्य में जितनी चेतना आती है उतनी उपदेश की 10 बातों से भी नहीं आ सकती। कहीं व्यंग की बात यदि किसी सुंदरी के मुंह से निकले और वो सुंदरी यदि संबंध में साली लगती हो तो उस व्यंग का असर 100 गुना अधिक जोरदार होता है। विवाह के बाद नलिनी बाबू कलकत्ता लौटे, उनके ससुर जी भी सपरिवार इलाहाबाद चले गए थे, लेकिन विदुषी साली के व्यंग को नलिनी बाबू किसी तरह भी नहीं भुला सके। एक दिन शाम को नलिनी बाबू ऑफिस से घर आकर आराम कुर्सी पर लेटे लेटे धूम्रपान कर रहे थे, अचानक उन्हें एक बात सूझी, क्यों वो भी तो एक कोशिश करने से ही कोमलता के इस कलंक को मिटा सकते हैं, अपने शरीर को लौह पुरुषों की तरह मजबूत बना सकते हैं। दूसरे ही दिन उन्होंने बाजार से डंबल आदि सामान खरीदे और घर में ही नियम पूर्वक व्यायाम शुरू कर दिया। रोज के खाने में से मिठाई दूध घी और चावल यथासंभव बंद कर रोटी मांस अंडा आदि ही डाइट में शामिल रखे। पहले पहल तो 5-7 मिनट से अधिक देर व्यायाम नहीं कर पाते थे, वो हालत खराब हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होने पर वो सुबह शाम आधा आधा घंटा तक नियमित रूप से व्यायाम करने लगे। 1 साल तक इसी प्रकार करते रहने पर उनके अंग प्रत्यंग बहुत ही सुगठित और मजबूत हो गए। अपने चेहरे को और भी अधिक रौबदार बनाने के विचार से उन्होंने दाढ़ी काटना भी छोड़ दिया। 1-2 शिकारी मित्रों के साथ मिलकर बीच बीच में वो देहात जाकर बत्तख बनेले सुअर आदि का शिकार भी करते। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। अब वो पहले के नलिनी नहीं है, अब उनके गालों पर चर्बी नहीं है, ठुड्डी पतली हो गई है, हाथ पैरों में हड्डियां ही अधिक हैं। अब वो अपने नाम को चरितार्थ नहीं करते और इसीलिए अब एक बार वो कुंजबाला से मुलाकात करना चाहते हैं। ओह, यदि नाम को भी बदलने का कोई उपाय होता, नलिनी बाबू ने सोचा। उनके घर लड़का पैदा होने पर वो उसका बड़ा ही भयानक नाम रखेंगे। कौन सा नाम रखेंगे अभी ठीक नहीं कर सके हैं। दूसरे दिन 2 बजे नलिनी इलाहाबाद स्टेशन पर उतरा तो पायजामा और लंबा सा पंजाबी कोट पहने था, सिर पर साफा भी बंधा था, हाथ में एक बड़ी सी लाठी, सामान असबाब के साथ बंदूक का भी एक बक्सा था। छुट्टियों में शिकार खेलने की इच्छा थी। स्टेशन पर उतरते ही एक बार चारों ओर देखा तो मालूम हुआ कि कोई उसे लेने नहीं आया। कल रवाना होने से पहले उसने ससुर जी के नाम जो 4 आने वाला एक टेलीग्राम भेजा था वो शायद अभी तक पहुंचा नहीं। कुली को बुलाकर सामान लेकर नलिनी स्टेशन से बाहर आया। एक कोचवान से पूछा, महेंद्र बाबू वकील का मकान जानते हो? हाँ हाँ बाबू, आइए। चलो, कहकर नलिनी गाड़ी में बैठ गया। नलिनी पहली बार इलाहाबाद आया था। यहाँ तक कि बंगाल के बाहर पैर रखने का भी यही पहला अवसर था उसका। वो इस पश्चिमी शहर के नए नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ा। आधे घंटे बाद गाड़ी एक बड़े कंपाउंड वाले मकान में जा घुसी। सामने ही बाहर की ओर बैठक खाना था। बरामदे में 9-10 वर्ष की एक लड़की खेल रही थी। बरामदे के नीचे बाईं तरफ एक कुआं था, जहां बैठा एक नौकर जोर जोर से कढ़ाई मांज रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर नलिनी ने उस नौकर से पूछा,
महेंद्र बाबू वकील का मकान यही है?
हाँ बाबू,
वो केदार बाबू वकील के यहाँ चौपड़ खेलने गए हैं।
अच्छा, भीतर कह दो कि जामाई बाबू आए हैं।
जो ही ये बात बरामदे में खेलती लड़की ने सुनी, वो दौड़कर मकान के अंदर जाकर गगनभेदी आवाज में बोली,
सब सुनो, जामाई बाबू आए हैं।
नौकर का नाम था रामशरण। वो इस बात को सुनकर दांत निपोड़ते हुए बोला,
अरे जामाई बाबू,
और झटपट हाथ धोकर उसने नलिनी को लंबी सलाम की, फिर गाड़ी से सामान उतारा। उधर मकान के अंदर से विभिन्न आकार प्रकार के बालक बालिकाएं झांक कर उसे देखने लगे। रामशरण ने नलिनी को बैठक में ले जाकर बैठाया।
बाबू स्नान करिएगा।
हाँ स्नान करूंगा, तुम गुसलखाने में पानी रख दो।
इसी समय एक बंगालिन नौकरानी ने आकर नलिनी को प्रणाम कर पूछा,
अच्छी तरह तो थे जामाई बाबू?
हाँ अच्छा था, तुम लोग कैसे हो?
नौकरानी ने हंसकर कहा,
जैसा रखा है आपने, मैं आज 6 महीने से इस घर में नौकरी कर रही हूँ। दीदी से रोज पूछती हूँ जामाई बाबू कब आएंगे, तो दीदी कहती है यही छुट्टी होते ही आएंगे। सो इतने दिनों पर आपको याद तो आई, अच्छा ही हुआ। आप स्नान कर लीजिए, मांझी ने पूछा है कि आप अभी नाश्ता करेंगे या भात चढ़ा दिया जाए।
नलिनी मुगल सराय स्टेशन पर नाश्ता कर चुका था, अतः उसने भात खाने के लिए ही सम्मति दी।
अच्छा स्नान कर लीजिए, फिर मैं आपको एक नई चीज दिखाऊंगी। मेरे लिए बख्शीश में जो जेवर वगैरह लाए हूँ ना, सो निकाल कर रखिएगा।
इतना कहकर नौकरानी नलिनी के प्रति स्त्री सुलभ कटाक्ष मारकर हंस पड़ी। रामशरण ने टोका,
तू बख्शीश लेगी और मैं जैसे लूंगा ही नहीं।
नलिनी इसका मतलब कुछ नहीं समझ पाया, सिर्फ गंभीर होकर सिर हिलाता रहा। जब वो स्नान कर वापस आया तो देखा कुछ बालक बालिकाएं उसके बक्से को खोलकर बंदूक बाहर निकाल चुके हैं और सभी मिलकर उसके विभिन्न भागों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके हाथों से बंदूक लेकर नलिनी ने सावधानी से दूसरी जगह रख दी। इसी समय वो नौकरानी गोद में 2-1 महीने का बच्चा लिए अंदर आई। बच्चे के चेहरे को तुरंत ही साफ किया गया था, आंखों में अभी अभी काजल लगाया गया था, सिर के केश कायदे से सवारे गए थे। नौकरानी ने बच्चे को हाथों पर उठाकर नचाकर कहा,
देखिए जमाई बाबू, देखिए कैसा सोने का चांद हुआ है, जैसे राजकुमार हो। लीजिए जरा गोद में लीजिए।
नलिनी छोटा बच्चा कभी पसंद नहीं करता, लेकिन सभ्यता के नाते बच्चे को गोद में लेते हुए बोला,
वाह बड़ा अच्छा लड़का है।
सिर्फ अच्छा लड़का कहने से काम नहीं चलेगा, अभी क्या देखकर मुंह देखिएगा सो निकालिए।
नलिनी ने जेब से 2 रुपए निकालकर बच्चे की बंद मुट्ठी में घुसा दिए। ये देखकर नौकरानी गाल पर हाथ रखकर बोली,
मैया रे मैया, ये क्या, लोग क्या कहेंगे, चांदी देकर सोने के चांद का मुंह देखना।
वहां उपस्थित बालक बालिकाएं खिलखिलाकर हंस पड़े। नलिनी अभिभूत होकर जब कुछ और नहीं सोच पाया तो बोला,
सोना तो नहीं लाया हूं। उसे पत्नी पर क्रोध आया, उसे क्या पत्र में लिख नहीं देना चाहिए था कि अमुक के बच्चे का मुंह देखने के लिए गिन्नी ले आना।
नौकरानी तुरंत बोली,
ये कौन सुनेगा, तब तो आज ही सुनार को बुलाकर उसे सोने का गहना बनाने का हुक्म दीजिए, लड़के का बाप बनना आसान नहीं है।
नलिनी का दिमाग तो पहले से ही उलझ चुका था, अंत में इस बात को सुनकर रहा सहा ज्ञान भी जाता रहा। वो सोचने लगा, लड़के का बाप बनना आसान नहीं है, इसका क्या मतलब, क्या मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ। बच्चे को नौकरानी की गोद में वापस देते हुए
उसने डरते हुए पूछा, बच्चा कब हुआ?
नौकरानी फिर से गाल पर हाथ रखकर बोली,
उई माँ, कमाल है आप भी, लड़का कब हुआ ये भी आप नहीं जानते, मोहल्ले वालों से पूछ लेते।
उन बालक बालिकाओं में से जो दो एक कुछ सयाने थे, नौकरानी के इस व्यंग को सुनकर हंस पड़े। उनकी देखा देखी जो छोटे छोटे थे वे भी जोर से हंसकर फर्श पर लौटने लगे।
तुरंत ही नहाए हुए नलिनी के चेहरे पर पसीना आ गया। वो मन के विस्मय को मन में ही दबाकर रखने की जी जान से कोशिश करने लगा। इस गूढ़ रहस्य को समझने की शक्ति उसमें नहीं थी।
इसी समय एक बालिका आकर नलिनी के हाथ में एक गिलास देकर बोली,
जामाई बाबू ये शरबत पीजिए।
शरबत नमक का था। नलिनी ने गिलास मुंह से लगाकर नीचे रख दिया। तभी अचानक उसके मन में हुआ कि उसके प्रति जो बाप बनने का आरोप लगाया गया है वो भी शायद हंसी ठट्टे का ही एक अंश है। इस नतीजे पर पहुंचते ही मन कुछ शांत हो गया, टेढ़ी भौएं फिर से सीधी हो गईं। उसी बैठक खाने के एक कोने की तरफ किवाड़ खुलने की आवाज हुई। किवाड़ों के आगे लगे पर्दे को हटाकर नौकर रामशरण आकर बोला,
आइए बाबूजी, नाश्ता तैयार है, भात में अभी थोड़ी देर है, पहले थोड़ा नाश्ता कर लीजिए।
नलिनी बाबू ने उधर देखा, अंतःपुर का एक कमरा दिखाई दे रहा था। वो उस कमरे में घुसे। कमरे के बीचों बीच सुंदर पर्शियन गलीचा नुमा आसन बिछा हुआ था। उसके आगे चांदी की तश्तरी, कटोरी, गिलास और उन सब में रखे हुए कितनी ही तरह के भोजन और पेय हैं। नलिनी बाबू उस आसन पर बैठकर धीरे धीरे नाश्ता करने लगे कि इतने में ही दूसरे कमरे से पायल की रुंझुन सुनाई दी। एक छोटी सी बालिका दरवाजे से मुंह निकालकर बोली,
मंजली दीदी आती हैं।
नलिनी ने समझा कुंजबाला आ रही है, सो उसने अपनी दाहिनी आस्तीन अच्छी तरह समेट ली ताकि कुंजबाला देख सके कि अब उसकी कलाई गोल और थुलथुली नहीं है बल्कि पुष्ट और शिराओं से ढकी है। पायल की आवाज क्रमशः नजदीक आने लगी,
क्यों भाई इतने दिनों बाद याद आई,
कहती हुई एक युवती कमरे के बीच आकर खड़ी हुई। लेकिन ज्यों ही दोनों की आंखें चार हुईं, वो महिला लंबा घूंघट काढ़कर तेजी से कमरे के बाहर हो गई। वो कुंजबाला नहीं थी, इतना नलिनी ने देख लिया। बगल के कमरे से दो तीन औरतों का उत्तेजित स्वर नलिनी के कानों में पड़ा,
क्यों री भाग क्यों आई?
मैयारी वो तो कोई और है।
कोई और है? क्या कहती है, वो हमारा शरद नहीं है क्या?
नहीं, शरद क्यों होने लगा?
तब कौन है?
मैं क्या जानू, ये क्या माजरा है, कोई ठग है क्या?
हुंडो जैसा हुलिया है, ठग हो तो कोई आश्चर्य नहीं।
हे भगवान, ये क्या गजब हुआ, इस घर का जमाई बनकर ये कौन आ गया?
एक बच्चे की आवाज आई, एक बंदूक भी साथ लाया है।
हे? बाबा रे शोर बनाश, अरे रामशरण रामशरण कहाँ मर गया रे, जा तुरंत बाबू को खबर कर दे।
औरतों की चीख पुकार और भाग दौड़ सुनाई पड़ी। उसके बाद नलिनी बाबू ने और कुछ नहीं सुना। इसी बीच पास की किताबों की अलमारी पर नलिनी की नजर पड़ी। कतार से लॉ रिपोर्ट्स लगी हुई थी, प्रत्येक के नीचे सुनहरे अक्षरों में M.N. घोष नाम लिखा था। फौरन शुरू से अब तक की सारी बातें बिजली की तरह कौंद गईं नलिनी के दिमाग में। उनके ससुर का नाम तो महेंद्रनाथ बंदोपाध्याय है और ये है महेंद्रनाथ घोष। शायद भूल से उसने किसी दूसरे व्यक्ति की ससुराल पर धावा बोल दिया है। नलिनी ने मन ही मन हंसते हुए निश्चिंत होकर नाश्ते की रकाबियां एक एक कर खाली कर डाली। इधर रामशरण अपने मालिक को खबर देने बेतहाशा दौड़ा। केदार बाबू वकील के यहाँ छुट्टियों में अक्सर चौसर जमती थी। उस दिन वहाँ बड़े महेंद्र बाबू, छोटे महेंद्र बाबू जो कि नलिनी के ससुर थे, और भी दूसरे कितने ही वकील इकट्ठे थे। खेल चल रहा था कि उसी समय आंधी की तरह रामशरण पहुंचा और अपने मालिक से बोला,
हुजूर हुजूर जल्दी घर चलिए।
उसका चेहरा देख कर घबराते हुए उन्होंने पूछा,
क्यों रे कोई बीमार तो नहीं हो गया?
मकान में एक डाकू घुस आया है।
सुनते ही सारे वकील उत्सुक हो उठे। महेंद्रनाथ घोष बोले,
क्या कहा डाकू? वो भी दिन दहाड़े?
जी डाकू नहीं तो ठग या पागल है, कुछ ठीक से पता नहीं चलता। वो अपने आप को हुजूर का दामाद कहता है।
ये सुनकर तो सभी हंस पड़े। महेंद्रनाथ घोष ने उत्तेजित होकर पूछा,
कब आया, क्या कहता है? यही कोई 3 बजे आया है हुजूर, साथ में लाठी है, बंदूक है। अंदर जाकर नाश्ता किया तब पता चला, मांझी वगैरह बहुत डर गई हैं।
बंदूक लाया है, लाठी लाया है, अरे बदमाश पाजी सुअर, तू घर को किसके सहारे छोड़कर आया है?
कहकर पागल की तरह महेंद्र बाबू बाहर दौड़े। गाड़ी तैयार थी, उछलकर गाड़ी में बैठते ही चिल्लाए, तेजी से हाँको। उनके कई वकील दोस्त भी साथ साथ बाहर आए।
कोई पागल ही होगा शायद। अरे नहीं, पागल होता तो बंदूक क्यों लाता, जरूर कोई बदमाश या गुंडा होगा।
छोटे महेंद्र बाबू यानी नलिनी के ससुर ने कहा,
अरे पागल हो या गुंडा, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले जरूर कर देना।
गाड़ी बहुत तेजी से चली। मकान पर पहुंचते ही उछलकर बाहर आते हुए महेंद्र बाबू ने पूछा,
कहाँ है वो?
इसी समय नलिनी कमरे के बाहर बरामदे में आकर खड़ा हुआ, गृहस्वामी का अभिवादन करके बोला,
आप ही महेंद्र बाबू हैं, आपसे मुझे एक बात की क्षमा याचना करनी है।
नलिनी के चेहरे के भाव और बातों से महेंद्र बाबू जरा सक पकाए। घर पहुंचते ही जिस तरह प्रहार करने की व्यवस्था सोच रहे थे उसमें रुकावट आ गई। महेंद्र बाबू ने पूछा,
आप कौन हैं?
जी मेरा नाम नलिनीकांत मुखोपाध्याय है, महेंद्रनाथ बंदोपाध्याय मेरे ससुर हैं। स्टेशन पर किराए की गाड़ी के कोचवान को महेंद्र बाबू वकील के घर पर चलने को कहा था, सो उसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। ये भूल कुछ ही देर पहले मालूम हुई है, अब तक मैं जा चुका होता, लेकिन ये सोचकर कि लोग आपको बुलाने गए हैं, आपसे क्षमा याचना करके जाऊं, इसीलिए प्रतीक्षा कर रहा हूं।
महेंद्र घोष का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया, वो भी नलिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर ठठाकर हंसने लगे।
महेंद्र के जमाई हो तुम, अच्छा अच्छा, देखो यहाँ महेंद्र बाबू नाम के 2 वकील हैं। इस कारण मुवक्किलों को भी कभी कभी परेशानी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुफस्सिल से कोई वकील मेरे पास मुकदमा भेजता है तो मुवक्किल कागजात लेकर जा पहुंचता है तुम्हारी ससुराल में, लेकिन जमाई की गड़बड़ी ये पहली बार हुई है।
महेंद्र घोष ने जो हंसना शुरू किया तो हंसते ही रहे कुछ देर तक। उसके बाद उन्होंने नलिनी को बैठक खाने में ला बिठाया। थोड़ी देर गपशप करने के बाद नलिनी के लिए भाड़े की एक गाड़ी फिर आई और वो विदा लेकर अपनी ससुराल रवाना हो गया। इधर महेंद्रनाथ बंदोपाध्याय का मकान शाहगंज में था। उन्होंने घर पहुंचते ही चाय और खुशबूदार तंबाकू की फरमाइश की। ऑफिस के कमरे में एक आराम कुर्सी पर बैठे बैठे चाय पीने लगे। नौकर एक बड़ी सी चिलम गुड़गुड़े पर रख गया, फिर चिलम की आग धीरे धीरे पंखी से सुलगा दी। चाय पीना खत्म होते ही महेंद्र बाबू ने गुड़गुड़े की नली मुंह में लेकर आराम से आंखें मूंद ली। इसी तरह कुछ देर हुई थी कि भाड़े की एक गाड़ी उनके कंपाउंड के अंदर दाखिल हुई। अच्छे वकील के बंगले पर तो कितने ही आदमी आते जाते रहते हैं, इससे महेंद्र बाबू जरा भी व्यस्त नहीं हुए, लेकिन आंखें खोल ली। बाहर से एक अपरिचित सी आवाज सुनाई दी,
यही महेंद्र बाबू का मकान है क्या?
हाँ बाबू।
खबर दो, कहो जमाई बाबू आए हैं।
जमाई शब्द सुनते ही महेंद्र बाबू आराम कुर्सी से उछल पड़े। खिड़की का पर्दा उठाकर देखा तो मुस्टंडा सा सिर का साफा हाथ में पकड़े एक तगड़ा सा आदमी दूसरे हाथ में लंबी लाठी लिए खड़ा है। सामान के साथ ही कोचवान को गाड़ी के अंदर से बंदूक का बक्स निकालते हुए देखा। देखते ही महेंद्र बाबू ने पुकारा,
अरे कोई है रे,
और वो बाहर बरामदे में आकर खड़े हो गए। उनको खड़ा देख नलिनी कुछ सक पका गया। महेंद्र बाबू दांत पीसकर सप्तम स्वर में बोले,
बाजी ठग कहीं का, भाग यहां से, फौरन भाग, इधर उधर घूमकर अंत में मेरे घर पर भी धावा, ससुर बनाने के लिए और कोई दूसरा नहीं मिला, बदमाश गुंडा।
तब तक नौकर दरबान आदि आ जुटे। महेंद्र बाबू ने आज्ञा दी,
अरे मार कर निकाल दो, गर्दनिया देकर निकाल दो इसे।
नौकर लोगों ने ज्यों ही नलिनी पर आक्रमण करना चाहा, त्यों ही नलिनी लंबी लाठी ऊपर उठाते हुए गर्जा,
खबरदार कोई आगे बढ़ा तो मैं खुद चला जाऊंगा,
लेकिन जो मुझे छुएगा उसकी हड्डी चूर चूर कर दूंगा।
नलिनी की वो रुद्र मूर्ति और लाठी देखकर नौकर लोग हिचकिचाकर मूर्ति से वहीं के वहीं खड़े रह गए। नलिनी ने महेंद्र बाबू को लक्ष्य कर कहा,
आप पहचानने में भूल कर रहे हैं, मैं आपका जमाई नलिनी हूं। इस बात से महेंद्र बाबू और भी जल भुन गए।
धूर्त कहीं का, तुम ससुर पहचानते हो और मैं जमाई नहीं पहचानता? मेरे जमाई को हुलिया इस तरह गुंडो जैसा? भाग यहां से, निकल, नहीं तो अभी पुलिस में दूंगा।
नलिनी फिर कुछ नहीं बोला, गाड़ी पर बैठ गया और कोचवान से स्टेशन चलने को कहा। बंगले का हो हल्ला बंद होने पर महेंद्र बाबू ने तंबाकू खत्म किया और घर के अंदर गए। देखते ही उनकी स्त्री ने कहा,
आज तुमने शराब पी रखी है क्या? पहली बार आए जमाई को घर से दुत्कार कर भगा दिया।
महेंद्र बाबू गंभीर होकर बोले,
किसे जमाई कहती हो? वो तो एक ठग था।
कैसे जाना कि वो ठग था?
तब केदार बाबू के यहाँ चौसर खेलते वक्त जो सब बातें महेंद्र बाबू ने सुनी थी उन्हें सुना दी।
तो इतने से ही कैसे साबित हो गया कि वो ठग था? तुम दोनों के नाम एक हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि घर भूलकर वो उनके यहाँ जा पहुँचा हो।
स्त्री के मुंह से ये युक्तिपूर्ण बात सुनकर महेंद्र बाबू जरा ढीले पड़े। वो तो लाठी बंदूक देखते ही अपनी सुध-बुध खो बैठे थे, इन बातों पर गौर करने का मौका ही नहीं मिला उनको। जरा देर सोचते ही महेंद्र बाबू बोले,
वो अगर नलनी होता तो खबर देकर आता, हम लोग उसे लाने स्टेशन जाते, ना कोई चिट्ठी पत्री ना तार, अचानक यूं क्या कोई जमाई पहली बार ससुराला धमकता है? वो ठग था, ठग।
क्यों, आने की बात क्यों नहीं थी? आने की बात तो थी ही, दुर्गा पूजा के पहले ही तो आना था, हमें तो सरोज बता चुकी है।
हाँ, कब आएगा इसकी ठीक खबर नहीं थी। पिता को आफत में पड़ा देख कुंज बाला बोली,
माँ वो नलिनी नहीं था, मैंने उसे देखा है।
महेंद्र बाबू बोले,
तूने उसे देखा था क्या? बोल तो जरा, कहाँ से देखा था?
जब हो हल्ला मच रहा था तभी मैंने दुमंजिले की खिड़की से झांक कर देखा था। हमारा नलिनी तो माखन की पुतली जैसा है और ये था बिल्कुल कड़ियल जवान।
महेंद्र बाबू को काफी सांत्वना मिली।
ठीक कहा तूने, मैंने तो ये बात उसके मुंह पर कह दी थी, मैं क्या अपना जमाई नहीं पहचानता हूँ? उसका हुलिया तो ठीक मिर्जापुरी गुंडे जैसा था। नलिनी का तो खासा खूबसूरत और कोमल चेहरा है, शादी के दिन सिर्फ एक ही दिन देखा सही, लेकिन इसी कारण मैं कहीं ऐसी भूल कर सकता हूँ।
इसी प्रकार की बातें हो रही थी कि एक नौकर ने एक टेलीग्राम लाकर दिया। तार पढ़ते ही महेंद्र बाबू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही चार आने वाला तार था जिसे नलिनी ने रवाना होते वक्त भेजा था। उनकी पत्नी ने पूछा,
क्या खबर है?
अपराधी की तरह सिर खुजाते हुए महेंद्र बाबू बोले,
तार है, शायद वो नलिनी ही था।
ओह, तो अब उसे वापस लाने का उपाय?
चलो मैं खुद ही जाकर देखूं। जाते वक्त उसने कोचवान को स्टेशन चलने को कहा था, अभी तो कलकत्ता जाने की कोई गाड़ी नहीं है, शायद स्टेशन पर बैठा होगा। चलता हूं, जाकर बड़े प्यार से वापस ले आऊंगा उसे।
उफ।
घर के लोगों ने समझा था कि नलिनी इस घटना को सुनकर साली सलहत से व्यंग कर अपने मन की आंस निकालेगा, लेकिन स्टेशन से वापस आने के बाद एक दिन भी नलिनी ने उस बात का जिक्र नहीं उठाया। जो भूल हो चुकी थी उसके लिए ससुराल वाले सभी लज्जित थे और हर तरह से पश्चाताप करते थे, यही नलिनी के लिए बहुत था। पर एक दिन किसी दूसरी बात के प्रसंग में महेंद्र घोष का जिक्र आने पर उसने कहा,
जो भी हो, दूसरे के ससुराल में जाकर जो आदर सत्कार मैंने पाया है, बहुत से लोग अपनी ससुराल में भी वैसा नहीं पा सकते।
आप सुन रहे थे प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की लिखी कहानी का हिंदी अनुवाद जमाई, वाचन था निधि बासु का।
आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु
केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के पॉडकास्ट फॉलो करना न भूलें।